आकाशवाणी है। अब आप कनक लता से लोकसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई के वरिष्ठ पत्रकार दीपक रंजन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर हुई चर्चा का आज जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बजट में रेलवे को हुए रिकॉर्ड आवंटन का लाभ देश के प्रत्येक राज्य को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेलवे बजट को सामान्य बजट में मिलाने के बड़े लाभ मिले हैं, इससे उचित आवंटन हो रहा है और पारदर्शिता आई है। श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे में डीजल से संचालन के बजाय विद्युतीकरण करने से करीब 6000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में 47000 किलोमीटर रेलमार्ग का विद्युतीकरण हो चुका है और इस तरह लगभग 99% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद शताब्दी राय ने कहा कि सरकार का ध्यान बुजुर्ग रेल यात्रियों पर नहीं सिर्फ राजस्व बढ़ाने पर है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय कहता है कि वरिष्ठ नागरिकों को नीचे की सीट मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 70-80 साल के वरिष्ठ नागरिकों को ऊपर की सीट मिल रही है, किसी नौजवान को तत्काल में पैसा देकर नीचे की सीट मिल जाती है। उनका कहना था कि हाल में एक बुजुर्ग महिला का ऊपर की सीट से गिरने के कारण पैर टूट गया। सुश्री शताब्दी रॉय ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में रियायत को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि रेलवे यात्रा टिकटों को रद्द करने के नाम पर राजस्व एकत्र कर रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि देश अब सही मायनों में रेलवे के विकास को विस्तार दे रहा है। राष्ट्रीय जनता दल राजद के अभय सिन्हा ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कई महीने पहले कहा था कि देश में जितनी भी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें परिचालित हो रही हैं, उनमें अतिरिक्त डिब्बे 4-5 जनरल डिब्बे जोड़े जाएंगे। राजद सांसद ने दावा किया कि अभी तक एक भी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल डिब्बे नहीं बढ़ाए गए हैं। निर्दलीय सांसद अब्दुल रशीद शेख ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में स्थित शारदा पीठ तक रेल संपर्क की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि जब भी सरकार को उचित लगे उस पार की सरकार से बात करे। उड़ी से आगे शारदा पीठ के मंदिर हैं, जहां कश्मीरी पंडित श्रद्धालु जाना चाहते हैं, वहां ऐतिहासिक स्मारक है। निर्दलीय सांसद ने रेलवे की नौकरियों में कश्मीर के लोगों के लिए 1-2% आरक्षण का प्रावधान करने का भी सरकार से आग्रह किया। कांग्रेस के भजन लाल ने दावा किया कि पिछले 10 वर्ष के दौरान ट्रेनों में एक भी सामान्य डिब्बा नहीं बढ़ाया गया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में वातानुकूलित डिब्बों की क्षमता में लगभग 90% की वृद्धि हुई है, जबकि द्वितीय श्रेणी स्लीपर की क्षमता में मात्र 15% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कोरोना काल के दौरान बंद की गई रेलगाड़ियों का परिचालन फिर से शुरू करने और रेलवे में तकरीबन 2.5 लाख रिक्तियों को तुरंत भरने की भी मांग की। इस बीच पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि जब रेलवे का अलग से बजट हुआ करता था तो बजटीय आवंटन केवल 26000 करोड़ रुपए का था, जो आज 2,81,377 करोड़ रुपए हो गया है। तेलुगु देशम पार्टी के कृष्णा प्रसाद तेनेट्टी ने अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि अमृत भारत स्टेशन के तहत आधुनिक बनाए गए रेलवे स्टेशन हवाई अड्डों की तरह दिख रहे हैं। श्री तेनेट्टी ने यह भी कहा कि कोविड महामारी के दौरान जिन ट्रेनों का ठहराव कई स्टेशनों पर बंद कर दिया गया था, उन्हें फिर से शुरू करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के राजीव राय ने चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि रेलवे में लोको पायलट के 11000 पद रिक्त हैं। शिवसेना के श्रीकांत शिंदे ने महाराष्ट्र के सभी रेलवे स्टेशनों पर मराठी साहित्य का स्टॉल लगाए जाने की मांग की और वरिष्ठ नागरिक तथा पत्रकारों को कोरोना काल से पहले रेल किराए में मिलने वाली छूट बहाल करने का भी अनुरोध सरकार से किया। सपा के छोटे लाल ने गीत के रूप में अपने निर्वाचन क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज से संबंधित रेलवे की मांगें सरकार के समक्ष रखी। भारतीय जनता पार्टी के रविन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन ने कहा कि अब फिल्म कलाकार भी ट्रेनों में यात्रा करते हैं और सेल्फी खिंचवाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में आज भारतीय रेल नई ऊर्जा और नई दिशा के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि इसे 500 करोड़ रुपए की लागत से एक 5 सितारा परिसर की तरह विकसित किया जा रहा है। श्री रविकिशन ने सरकार से मांग की कि गोरखपुर स्टेशन पर चौरी चौरा आंदोलन के शहीदों की स्मृति में शहीद गैलरी का निर्माण किया जाए और गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा लगाई जाए। लोकसभा ने आज उन 8 विपक्षी सदस्यों का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। उन्हें संसद के बजट वर्तमान बजट सत्र के पहले सदन की अवमानना के मामले में निलंबित किया गया था। इसके साथ ही सदन में इस बात पर जोर दिया गया कि सदन के सुचारू रूप से संचालन के लिए सदस्यों के लिए लक्ष्मण रेखा होना जरूरी है। सदन में कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडी कुनील सुरेश ने आसन से निलंबन रद्द करने का अनुरोध किया और विपक्षी सदस्यों के आचरण पर खेद भी जताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने निलंबन खत्म करने का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेन्द्र यादव ने कहा कि सारे सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वे सदन की मर्यादा का पालन करते हुए सदन को चलाएं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग भी संकल्प लें, तभी सदन सुचारू तरीके से चल सकेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि देश में एक संदेश जाना चाहिए कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए सदन चला रहे हैं और हम सब देश की सेवा के लिए यहां आए हैं। जनता दल यू के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि ताली दोनों हाथ से बजती है और ऐसे में विपक्ष को भी लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें 8 विपक्षी सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी थी। श्री रिजिजू ने कहा कि सोमवार की बैठक में कुछ लक्ष्मण रेखा खींचने की बात हुई थी। उन्होंने कहा कि कोई नहीं चाहेगा कि सदस्य निलंबित होकर बाहर रहें। जनता ने सांसदों को कागज फाड़कर फेंकने, मेजों पर चढ़ने और मारपीट के लिए नहीं भेजा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी दलों को सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा और गौरवशाली परंपरा बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने लोकसभा के उस बुलेटिन का भी उल्लेख किया, जिसमें नियम 124(a)(2)(3) का हवाला दिया गया है, जो संसद परिसर के क्षेत्र और मार्ग को सांसदों के लिए खुला और निर्बाध बनाए रखने के लिहाज से कुछ गतिविधियों पर रोक लगाता है। बुलेटिन में विशेष रूप से कहा गया है कि परिसर में हथियार, झंडे, पोस्टर, लाठी, भाला, तलवार, डंडे और ईंट आदि ले जाना निषिद्ध है।
ये आकाशवाणी है। अब आप वैष्णवी से राज्यसभा की कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा की अविनाश। राज्यसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस विनियोग विधेयक में विभिन्न मदों के अलावा उर्वरकों की सब्सिडी पर भी ध्यान दिया गया है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उर्वरकों की कोई कमी नहीं होगी और अनुपूरक मांगों में इसका पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि अगली रबी फसल के लिए अभी से प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई पर भी गौर किया गया है ताकि वे किसी संकट से प्रभावित नहीं हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया है और उसे ध्यान में रखते हुए उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसका फायदा पश्चिम एशिया संकट से निपटने में मिल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना में अनियमितताओं की कई शिकायतें मिलने के बाद इस योजना के पूरे स्वरूप में बदलाव का विचार किया गया और विकसित भारत जी राम जी योजना लाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना के तहत अब गांवों के विकास की योजना दिल्ली में नहीं, राज्य में नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत में बनेगी। ग्रामीण मंत्रालय के कामकाज पर उच्च सदन में हुई चर्चा का भोजनावकाश के बाद जवाब देते हुए श्री चौहान ने यह भी कहा कि इस योजना के केंद्र में मजदूरों को रोजगार देने का भाव है और यही वजह है कि उनके लिए 100 नहीं बल्कि 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए तय राशि को देखें तो एक पंचायत के विकास पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण मंत्रालय के कामकाज पर यह चर्चा 10 मार्च को शुरू हुई थी और इसमें 54 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। श्री चौहान ने कहा कि चर्चा में कई सदस्यों ने दोहराया कि मनरेगा का नाम बदला दिया जाए और उसमें से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि बापू हम सबके लिए माननीय हैं, बापू हमारे विचारों में हैं और हमने सदैव बापू का आदर किया है। कुछ लोग बापू का नाम भले ही लेते हैं पर उनके सिद्धांतों को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि बजट में 95,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान इस योजना के लिए किया गया। श्री चौहान ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत हो रही है, केंद्र के साथ ही राज्य भी आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और केंद्र की ओर से राज्यों को उनकी हिस्सेदारी भी दी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को मनरेगा का बकाया अब तक नहीं मिला है। श्री चौहान ने कहा कि अनियमितताओं की वजह से पश्चिम बंगाल का मनरेगा का बकाया रोका गया, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। कृषि विभाग की योजनाओं और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की राशि राज्य को दी जा चुकी है। उनके जवाब के बाद सदन में अनुदान की अनुपूरक मांगों और उससे जुड़े विनियोग विधेयक पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया। चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और उस पर मौजूदा संकट से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। वहीं सत्ता पक्ष ने दावा किया कि सरकार की विभिन्न नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के तहत सबसे अधिक खर्च थल सेना पर होता है, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। उन्होंने कहा कि अब युद्ध आसमान में होने लगे हैं, इसलिए सरकार को नई रणनीति अपनानी होगी। उन्होंने कहा कि ड्रोन और मिसाइल को ध्यान में रखते हुए अलग से नीति बनानी होगी और शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा। तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले ने कहा कि सरकारी दस्तावेजों के अनुसार कई मंत्रालय ने आवंटित राशि खर्च नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है बल्कि सरकार की नाकामी को दर्शाता है। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ वे देश को आगे ले जा रही है। बसपा के रामजी ने सरकार से शिक्षा पर जोर देने का आह्वान किया और स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने की मांग की। द्रमुक की कनिमोई एनवीएन सोमू ने रसोई गैस की समस्या को लेकर सरकार पर निशाना साधा। शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर बिना खर्चे के कई विधेयक पारित कराने का आरोप लगाया और कहा कि उसने लोकतंत्र की गरिमा को गिरा दिया है। उन्होंने भी रसोई गैस की समस्या का जिक्र किया। चर्चा में मनोनीत हर्षवर्धन श्रृंखला, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी, IUML के हारिस बीरन, माकपा के वी शिवदासन, BRS के रविचंद्रन बद्दीराजू, शिवसेना उबाटा के संजय राउत, भाजपा के महेंद्र भट्ट, दीपक प्रकाश, शंभु शरण पटेल, सदानंद महालू, शेठ तानवड़े, अजीत माधवराव कोपछड़े, धर्मशीला गुप्ता, बंशीलाल गुर्जर भी भाग लिया। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर शून्यकाल और प्रश्नकाल सामान्य रूप से चले। शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने देश में डॉक्टरों पर हमले की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से न केवल डॉक्टर और मरीज के बीच विश्वास कम होता है बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं का माहौल भी जटिल बन जाता है। समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने देश के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव कराने की मांग करते हुए कहा कि छात्र संघ की राजनीति से निकले छात्र नेता बाद में राजनीति में आते हैं और बेहद परिपक्व माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति को लोकतंत्र की नर्सरी और छात्र संघों को संसदीय प्रणाली की प्राथमिक इकाई कहा जाता था, लेकिन आज छात्र संघों के चुनाव नहीं हो रहे हैं। भाजपा के अजित माधवराव कोपछड़े ने सीमित भूमि संसाधनों के कारण अंतिम संस्कार के वैज्ञानिक प्रबंधन की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि सभी परंपराओं को सम्मान करते हुए इसके लिए एक नीति बनाई जानी चाहिए। इसी पार्टी के सांसद सदानंद महालू, शेठ तानावड़े ने फिल्मों और वेब सीरीज का बच्चों, किशोरों और युवाओं पर प्रभाव पड़ने का जिक्र करते हुए कहा कि निर्माताओं को सामग्री का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इसी पार्टी की धर्मशीला गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की नियमित देखभाल एवं रखरखाव किए जाने की मांग करते हुए कहा कि देश की बड़ी आबादी आवागमन के लिए सार्वजनिक परिवहन के संसाधनों का उपयोग करती है। उन्होंने अलीगढ़ की घटना का जिक्र किया जब करीब 8 साल की एक बच्ची बस का जर्जर फर्श टूट जाने से नीचे सड़क पर गिर गई और बस का पिछला पहिया उसके ऊपर से गुजर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने ऑनलाइन कंसल्टेंसी को लेकर कड़े नियम बनाने, ई फार्मेसी को सख्त बनाने और नियमों का कड़ाई से पालन किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि लंबित फार्मेसी नियमावली को अभी अद्यतन किया जाना चाहिए।